उर्वशी में सौंदर्य तत्व। मनुष्य सौंदर्य उपासक प्राणी है। अनादि काल से ही उसकी यह उपासना अनवरत गति से चली आ रही है। मानव मन ने अब तक अनेक संस्कृतियों को बदलते, अनेक शताब्दियों को करवटें लेते और अनेक विचारधाराओं को विभिन्न प्रवाहों में बहते देखा है, किंतु उसकी उपासना में कोई अंतर नहीं आया। सौंदर्य के प्रति उसका अनुराग अक्षुण्ण बना रहा और भविष्य में ही बना रहेगा। यही कारण है कि वह अपने सभी कार्यों में, चाहे वे बाह्य हों अथवा आंतरिक, सौंदर्य की प्रतिष्ठा करने का यथाशक्ति प्रयास करता है। उसका यही प्रयास काव्य में परिलक्षित होता है। सौंदर्य का अर्थ। सौंदर्य सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द का अर्थ तीन प्रकार से हो सकता है। पहला, सु अर्थात सुष्ठु या अच्छी प्रकार, और उंद अर्थात आर्द्र करना, अर्थात अच्छी प्रकार, आर्द्र यानी गीला यानी सरस करने वाला। दूसरा, सु यानी अच्छी प्रकार, नंदयति यानी प्रसन्न करना, अर्थात जो अच्छी प्रकार प्रसन्न करे। तीसरा, सुंदरम रात एते सुंदरम, अर्थात जो सुंद कर्तनी को लाए वह सुंदर कहलाता है। भाव यह है कि कैंची कासा तीक्ष्ण यानी गहरा प्रभाव करने वाला तत्व सुंदर है। अतः कहा जा सकता है कि सौंदर्य वह तत्व है जो सरसता प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ मन पर गहरा प्रभाव भी डालता हो। काव्य और सौंदर्य। काव्य का प्रयोजन भी सरसता के साथ साथ मानव मन पर गहरा प्रभाव डालना होता है। इसीलिए काव्य और सौंदर्य का अटूट संबंध है। यह कहना अन्यथा न होगा कि काव्य का जन्म जिन अनुभूतियों से हुआ, सौंदर्य का उनमें प्रमुख स्थान है। किंतु काव्य का सौंदर्य अत्यंत विशद और व्यापक होता है। कवि आंतरिक और बाह्य सौंदर्य के इन दोनों पक्षों को ही अपनी कृति में संजोता है। काव्य के सौंदर्य में वस्तु और अभिव्यंजना का समुचित संयोग होता है। अर्थात काव्यकार अपने प्रतिपाद्य को तो सौंदर्य निधि बनाता ही है, प्रतिपादन के साधनों को भी स्वरूप मंडित करता है। उसके काव्य में वे ही उपकरण ग्राह्य होते हैं जो स्वयं भी सुंदर हों और कवि के प्रतिपाद्य को सौंदर्यान्वित कर सकें। इसीलिए सत्य और शिव के साथ सौंदर्य को भी काव्य का अपरिहार्य तत्व माना गया है। सौंदर्य के विविध रूप। सौंदर्य का विस्तार अत्यंत व्यापक है, फिर भी स्थूलतः इसके चार भाग किए जा सकते हैं। पहला, मानवीय सौंदर्य, दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य, तीसरा वस्तुगत सौंदर्य और चौथा कलागत सौंदर्य। काव्य में न्यूनाधिक मात्रा में सौंदर्य के चारों रूप उपलब्ध होते हैं, किंतु काव्य सुंदर उपकरणों के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति है। उर्वशी में सौंदर्य तत्व। दिनकर जितने ओज के कवि हैं उतने ही सौंदर्य के भी हैं। उनकी दृष्टि में कला का सर्वोपरि धर्म सौंदर्य है। यही कारण है कि उनकी अन्य कृतियों के समान उर्वशी में भी सौंदर्य तत्वों का पर्याप्त सन्निवेश हुआ है। इसमें सौंदर्य के उपर्युक्त चारों रूप आसानी से देखे जा सकते हैं। पहला, मानवीय सौंदर्य। मानवीय सौंदर्य को दो वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है, पुरुष का सौंदर्य और नारी का सौंदर्य। इनके भी दो दो उपभेद किए जा सकते हैं, आंतरिक सौंदर्य और बाह्य सौंदर्य। उर्वशी का नायक पुरुर्वा है, जिसके माध्यम से विशेष रूप से पुरुष सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। इस अभिव्यक्ति में उसके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सौंदर्य का निरूपण हुआ है। आंतरिक सौंदर्य से तात्पर्य है भावों का सौंदर्य। इसमें संदेह नहीं कि पुरुर्वा उदात्त भावों का व्यक्ति है। काव्य शास्त्र में नायक के माध्यम से पुरुष के इन आठ गुणों को सात्विक अथवा आंतरिक माना गया है। शोभा विलासो माधुर्य गांभीर्य स्थैर्य तजसी ललितौदार्य मित्यष्टो सत्वजाह पौरुषा गुणा। अर्थात शोभा, विलास, माधुर्य, गांभीर्य, स्थिरता, तेज, ललित और उदारता, पुरुष के ये आठ गुण सात्विक होते हैं। शोभा में नीच के प्रति घृणा और उच्च के प्रति स्पर्धा होती है, तथा शौर्य और दक्षता में गुण भी होते हैं। विलास में चाल और दृष्टि धैर्यपूर्ण होती है और वचन सीमित होते हैं। महान संक्षोभ के कारण के उपस्थित होते हुए कोमल विकार का उत्पन्न होना माधुर्य कहलाता है। जिस गुण के प्रभाव से विकार दिखाई न पड़े उस गुण को गंभीरता कहते हैं। विघ्नों के समूह के होते हुए भी अपने कार्य से अलग न होना स्थिरता गुण होता है। प्राणों की आपत्ति आने पर भी आक्षेप इत्यादि का न सहना तेज है। स्वाभाविक श्रृंगार और आकार की चेष्टा करने को ललित कहते हैं। वचनों के साथ जीवन पर्यंत सभी कुछ दे देना अथवा सज्जनों के अनुकूल रहना उदाहरण है। पुरुर्वा में सभी आंतरिक गुण मिलते हैं। पुकार हमारी एक सुनी एक राजा ने, दौड़ पड़े वे सदैव उर्वशी को अविलंब बचाने, और उन्हीं नरवीर नृपति के पौरुष से भुजबल से मुक्त हुई उर्वशी हमारी उस दिन काल कवल से। इन पंक्तियों में राजा की शोभा भाव वर्णित है। और भी, कात्केय समशूर देवताओं के गुरुसम ज्ञानी, रविसम तेजवंत सुरपति के सदृश प्रतापी मानी, धन सदृश संग्रही व्योम बत मुक्त जलद निभत्यागी कुसुम सदृश मधुमय मनोज कुसुमायुध से अनुरागी। आंतरिक सौंदर्य की तरह पूर्वा के बाह्य सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने किया है। वह अपेक्षाकृत बहुत कम है। वह वर्णन भी स्वयं पूर्वा के शब्दों द्वारा ही व्यक्त हुआ है। यह शिलासावक्ष ए चट्टान सी मेरी भुजाएं सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल और आग का सागर अगम उत्तम उच्छल है। उर्वशी के सौंदर्य निरूपण में कवि का मन खूब रमा है। यद्यपि इसका भी आंतरिक सौंदर्य ही अधिक है, पर बाह्य सौंदर्य का ही पर्याप्त अंकन हुआ है। यथा लाल लाल वे चरण कमल से कुमकुम से जावक से तन की रक्तिम कांत शुद्ध धुली हुई पावक से जग भर की माधुरी अरुण अधरों से धरी हुई सी आंखों में वारुणी रंग निद्रा कुछ परी हुई सी तन प्रकांति विकुलित मुकुलित अनंत ऊषाओं की लाली सी नूतनता संपूर्ण जगत की संचित हरियाली सी पग पड़ते ही फूट पड़े विद्रुम प्रवाल धूलों से जहां खड़ी हो वहीं व्योम पर जाम श्वेत फूलों से सुरपुर की कौमुदी ललित कामना इंद्र के मन की सिद्ध विरागी की समाधि में राग जगाने वाली देवों के शोणित में मधुमय आग लगाने वाली रति की पूर्ति रमा की प्रतिमा तृषा विस्मय नर की विधु की प्राणेश्वरी आरती शिखा काम के कर की। शील आदि गुण नारी के आंतरिक सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। उर्वशी में शील का था सागर तरंगित है। वह प्रेयसी के रूप में प्रेम भाव से ओतप्रोत है। वह अपने प्रेम के समक्ष अपना सर्वस्व बलिदान कर देती है। आ मेरे प्यारे त्रिशत श्रांत अंतः सर में मज्जित करके हर लूंगी मन की तपन चांदनी फूलों से सज्जित करके रसमयी मेघमाला बनकर मैं तुझे घेर छा जाऊंगी फूलों की छांह तले अपने अधरों की सुधा पिलाऊंगी। नारी केवल कोमल कुसुम ही नहीं वरन दहकती कली भी होती है। उसमें जितनी प्रेम भावना होती है उतना ही अपने सम्मान के प्रति विद्रोह भी होता है। उर्वशी में भी यही भावना दृष्टिगोचर होती है। उसका मत है कि यदि वह अपहृत की गई होती तो उसका अधिक सम्मान होता। सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है अयस्कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का जो सुख मिलता उस मनस्विनी वाम लोचनाओं को जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमी पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या की बल सहित हरण करते हैं। प्रेमिका के अतिरिक्त तो उर्वशी माँ भी है। उसका हृदय वात्सल्य भावों से परिप्रोत है। वह छिप छिप कर आयु को देखने के लिए वन में जाती है और अंतिम दिन अपना सारा दुलार अपने प्रिय पुत्र पर उड़ेल कर भी अतृप्त ही बनी रहती है। वस्तुतः माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। आयु की भोली दृष्टि में उसे समस्त विश्व का वैभव दिखाई पड़ता है। अरे देखती नहीं लाल की नन्ही नन्ही आंखों में अभी भी तो सुस्पष्ट स्वर के सपने झलक रहे हैं। टुकुर टुकुर संतुष्ट भाव से कैसे ताक रहा है मानो हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी समर्थ देवों सा। उर्वशी में नारी का एक और रूप है जिसके माध्यम से कवि को नारी मन के सौंदर्य को अंकित करने का अवकाश मिला है। वह है परिणीता का रूप। सुकन्या च्यवन ऋषि की धर्म पत्नी है। पत्नी के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है। उसे अपने पति पर गर्व होता है। यही परिणीता के भावों की उच्च भूमि है। सुकन्या को भी अपने पति पर गर्व है। किंतु चित्रलेखे मुझको अपने महर्षि भरता पर ग्लानि नहीं निस्सीम गर्व है। दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य। सौंदर्य का दूसरा रूप है प्राकृतिक सौंदर्य। इस रूप के अंतर्गत प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन होता है। अनादिकाल से ही प्रकृति अपने सौंदर्य का अमित भंडार मानव को सामने खोलती आई है और मानव यथाशक्ति उसके सौंदर्य को ग्रहण करके अपनी सौंदर्य तृषा को शमित करता आया है। दिनकर के काव्यों में प्राकृतिक सौंदर्य को पर्याप्त स्थान मिला है और उर्वशी में तो यह स्थान और ही विस्तृत हो गया है क्योंकि अन्य काव्यों की अपेक्षा कवि को इस काव्य में प्रकृति के रम्य रूपों को अंकित करने का अधिक अवसर मिला है। उर्वशी का प्रारंभ ही प्राकृतिक सौंदर्य से होता है। वसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की चांदनी रात में प्रकृति अपनी शोभा की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इसी पराकाष्ठा को देखकर उर्वशी का कवि कह उठता है नीचे पृथ्वी पर वसंत की कुसुम विभा छाई है ऊपर है चंद्रमा द्वादशी का निर्मेघ गगन में खुली नीलिमा पर विकीर्ण तारे यो दीप रहे हैं चमक रहे हो नील चील चीर कर बूटे जो चांदी के या प्रशांत निस्सीम जलधि में जैसे चरण चरण पर लील वारी को फोड़ ज्योति के दीप निकल आए हों। इन द्वीपों के बीच चंद्रमा मंद मंद चलता है मंद मंद चलती है नीचे वायु शांत मधुवन की मद विह्वल कामना प्रेम की मानो अलसाई सी कुसुम कुसुम पर विरम मंद मधुगति में घूम रही हो। प्रकृति की यह शोभा इतनी अपार और मादक है कि इसने जगत को ही मुग्ध नहीं किया वरन वह स्वयं अपना आपापन भूल गई है। स्वच्छ कौमुदी में प्रशांत जगती यों दमक रही है सत्य रूप तजकर जैसे हो समा गई दर्पण में शांत शांत सब ओर मंजुमानो चंद्रमा चंद्रिका मुखर में प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो। कहने का अभिप्राय है कि उर्वशी में प्रकृति के उश्रम में रूप को अपनाया गया है, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र छलकता हुआ दिखलाई देता है। तीसरा, वस्तुगत सौंदर्य। सौंदर्य का तीसरा रूप है वस्तुगत अथवा वर्ण विषय का सौंदर्य। किसी भी उत्तम काव्य के लिए आवश्यक माना गया है कि उसकी कथावस्तु उदात्त हो। कथावस्तु की उदात्तता ही उसका सौंदर्य है। इसी सौंदर्य की सुरक्षा के लिए काव्य आचार्यों ने एक मत से घोषणा की है कि उत्तम काव्य की कथावस्तु प्रख्यात हो और उसकी परिणति धर्म अर्थात काम अथवा मोक्ष में हो। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उर्वशी की कथावस्तु उदात्त है। वह इतनी प्रख्यात है कि वेद काल से बराबर भारतीय कवियों के हृदय को छूती रही है। इसकी सुंदरता या प्रभुविष्णुता बनाए रखने के लिए कवि ने सर्वत्र सफल योजना की है। इसके नायक और नायिका भी उन सभी गुणों से समन्वित हैं जो एक उदात्त कथावस्तु के नायक और नायिका के लिए अपेक्षित हैं। यह कथा केवल कल्पना के सुनहले पंखों पर उन्मुक्त आकाश में उड़कर ही अलम नहीं कर देती, वरन मानव जीवन के निगूढ़ रहस्य में पड़कर अपनी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। यह निगूढ़ रहस्य है काम का स्वरूप। मानव जीवन में काम की समस्या जितनी सहज और स्वाभाविक है, उतनी ही निगूढ़ और रहस्यमय भी है। काम ही मनुष्य को गिराकर पशुता के स्तर पर पहुंचा देता है और यही उसे उठाकर देवत्व की श्रेणी में बिठा देता है। अतः काम का उदात्तीकरण मानव जीवन की सर्वोत्तम सफलता है और यही उसके जीवन का ध्येय है। यही है प्रस्तुत काव्य का वर्ण विषय, जो अपनी शाश्वतता तथा अनिवार्यता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका फल काम प्राप्ति में दिखाया गया है, जो अपनी चरम कोटि और पहुंचकर मानव को वैराग्य की भावनाओं की ओर उन्मुख कर सकता है। इतनी महती भावनाओं से परिप्रोत वस्तु में कितना सौंदर्य है, इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। चौथा, कलागत सौंदर्य। कलागत सौंदर्य से तात्पर्य अभिव्यंजना के सौंदर्य से है। विषय अथवा प्रतिपाद्य चाहे जितना सौंदर्य युक्त हो, यदि उसकी अभिव्यक्ति में सौंदर्य नहीं है तो उसका प्रभाव निष्प्राण हो जाता है। इसीलिए सफल कवि जितना प्रतिपाद्य के सौंदर्य का ध्यान रखते हैं, उतना ही प्रतिपादन अथवा अभिव्यंजना के प्रति जागरूक रहते हैं। अभिव्यंजना के सौंदर्य के अंतर्गत मुख्यतया शब्द सौंदर्य, नाद सौंदर्य, संगीत सौंदर्य और अलंकार सौंदर्य का विवेचन अपेक्षित होता है। शब्द सौंदर्य का आधार है भावानुकूल शब्दों का चयन। हिंदी साहित्य में पंत जी अपनी इस प्रवृत्ति के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। दिनकर में भी शब्द चयन की क्षमता कम नहीं है। यथा, कौन भामिनी है जो अंगज पुत्र और प्रियतम में किसी एक को लेकर सुख से आयु बिता सकती है। कौन पुरंधरी तज सकती है पति के लिए तने को, कौन सती सुत के निमित्त स्वामी को त्याग सकेगी। इन पंक्तियों में भामिनी, पुरंधरी और सती शब्दों का प्रयोग कवि के सूक्ष्म शब्दार्थ विद्वता का परिचायक है। शब्दार्थ की सूक्ष्मता के साथ साथ कवि को शब्दनाद का ज्ञान होना भी चाहिए। शब्दनाद से अर्थ साम्य की जो ध्वनि मुखरित होती है, उससे प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यथा, शांत शांत सब ओर, किंतु यह कुणन कुणन स्वर कैसा, अतल व्योम उर्मे एक ऐसे नूपुर झलक उठे हैं। यहां पर कुणन कुणन में नूपुरों के स्वर मुखरित हो उठे हैं। साहित्य में संगीत का विशेष महत्व है। भर्तृहरि ने तो संगीत से विहीन मनुष्य को बिना सींग पूंछ का पशु ही बताया है। महाकवि शेक्सपियर ने उसे राजद्रोह अपकार का पात्र माना है। संगीत दो प्रकार का होता है, शब्द संगीत और स्वर संगीत। शब्द संगीत में लय के साथ स्वर साम्य होता है, स्वर संगीत में स्वर साम्य अपेक्षित नहीं। उर्वशी में दोनों प्रकार के संगीत मिलते हैं। यथा, जब तक यह पावक शेष तभी तक सखा मित्र त्रिभुवन में चलता है, यह भूतल छोड़ बादलों के ऊपर स्पंदन तेरा। जब तक यह पावक शेष तभी तक सिंधु समादर करता है, अपना समस्त मणिरत्न कोष चरणों पर लाकर धरता। स्वर संगीत, अयशमूल दोनों विकर्म है, हरण हो के भिक्षाटन और हरण करता मैं किसका, उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांत इंद्र के दृक की शीतलता थी। स्वर संगीत, अलंकार सौंदर्य का अभिप्राय है। अलंकारों का सहज तथा स्वाभाविक प्रयोग। काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है? इस प्रश्न के उत्तर में दो मत हो सकते हैं, किंतु काव्य में अलंकारों के सहज और स्वाभाविक प्रयोग से जो सौंदर्य आता है, उसे कोई भी अस्वीकृत नहीं कर सकता। अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सफल कवि दोनों प्रकार के अलंकारों से ही अपनी अभिव्यंजना का सौंदर्य बढ़ाते हैं। उर्वशी में ये दोनों प्रकार के अलंकार मिलते हैं। यथा, खुली नीलिमा पर विकर्ण तारियों दीप रहे हैं, चमक रहे हो नील चीर पर बूटे जो चांदी के, अनुप्रास या शब्दालंकार है। शांत शांत सब ओर मंजुमानो, चंद्रिका मुकुट में प्रकृति देख अपनी शोभा अपने को भूल गई हो, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार। सौंदर्य की व्यापकता। सौंदर्य की व्यापकता का वर्णन करना भारतीय कवियों के विशेष की विशेषता रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता के सौंदर्य को इतना व्यापक बताया कि समूचे संसार में उसी के सौंदर्य का प्रतिबिंब दिखा दिया। सूफी कवि जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य से ही सूर्य और चंद्रमा को दीपित बताया। यही परंपरा दिनकर के सौंदर्य विवेचन में प्रलक्षित होती है। उर्वशी कहती है, कब था ऐसा समय कि जब मेरा अस्तित्व नहीं था, कब आएगा वह भविष्य जिस दिन मैं नहीं रहूंगी, कौन पुरुष जिसकी समाधि में मेरी झलक नहीं है, कौन त्रिया मैं नहीं राजती हूँ जिसके यौवन में, कौन लोक कौन थी नहीं मेरी आह्लादनी जहाँ पर, कौन मेघ जिसको न सेज मैं अपनी बना चुकी हूँ। अपनी इस व्यापकता के कारण सौंदर्य जब धरातल से उठकर आत्मा के उस धरातल को छू पाता है जहाँ सीमा के बंधन नहीं होते और जहाँ सौंदर्य में इतना बल आ जाता है कि रूपसी नारी को स्वर्णांचल सातों अंबरों तक उड़ने लगता है। चिंतन की लहरों के समान सौंदर्य लहर में भी है बल, सातों अंबर तक उड़ता है रूपसी नारी का स्वर्णांचल। समाप्त।